सम्मान योग गुरु साथ संगजियो फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन की जाच जिंदगी का ढंग गुरबाणी के कथन अनुसार मनुख तीन थावां तो सीखता है किवें जीवना चाहिए जिंदगी किवें व्यतीत करना है। गुरबाणी के कथन अनुसार पहली प्रेरणा मनुख नूं मां बाप तो मिलती है, फिर जैसी इसकी संगत हो, फिर जैसी इसकी विद्या तालीम हो, मनुख उही कुछ हो जाता है जैसे इसके मां बाप हो, जैसी इसकी संगत हो, जैसे इसकी तालीम हो। तीन टकसाल ने जिथों मनुख की जिंदगी घड़ी जाती है, मां बाप, संगत और तालीम। मां बाप ठीक नहीं, संगत ठीक नहीं, तालीम ठीक नहीं, मनुख ठीक नहीं हो सकता, मनुख सही नहीं हो सकता। अगर मनुख गलत जीवन बतीत कर रहा है तो साहबां की बाणी कहती है ये तीन जिम्मेवार होंगे, तालीम, संगत और मां बाप। इस गल नूं सतगुरों की पंक्तियां के आधार देते मैं थोड़े सामने विस्तार सहित रखा ताकि एक गल समझ विच आ जाए। गुरु रामदास जी महाराज का यह वाक है जिसनों सामने रख के ते विचार में थोड़े सामने करने हैं। जिन हर हिरदे नाम न बसे हो तिन मात कीजे हर बांझा, तिन सुन्नी दे फिरे बिन नामे ओए खप खप मोए करांझा। जिन्हों के हिरदे परमात्मा का नाम नहीं बसया, रब्बी लगन नहीं पैदा हुई, ईश्वरी प्यार ते तड़प नहीं पैदा होया, गुरु रामदास जी महाराज कहते ने बेहतर है कि उन्होंने मां को बांध कर दिता जाता। वो पुत्रवंती क्यों बनी है? उन्हें पुत्र का मालिक नहीं बनना चाहिए, वो बांझ रहेगी। हिंदुस्तान में स्त्री वास्ते तो सब तो वड्डा श्राप है कि उन्हें कह दो तू बांझ रहे, तेरी गोद कभी हद हरी ना हो, तेरी गोद कभी हरी ना हो। तो इंजे किसी जमीन में कह देंगे तू हमेशा वास्ते बंजर ही रहे, तेरे कोई घास सोस बनस्पति का तिनका पैदा ही ना, तू हरी भरी कभी हो गई ना। यह बहुत वड्डा श्राप, पर महापुरुष जगत के रहबरी पुरुष चौथवीं जोत गुरु नानक देव जी महाराज की आपदा कर्म वाक है, जिन हर हिरदे नाम ना बसे। हुण जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं वसिया तारना ते उन्हां नूं चाहीदी सी, जिन्हें नाम नहीं जपया करड़ी गल ते उन्हूं करनी चाहीदी सी नहीं कीती। तिन मौत की जे हर बांझा, बेहतर है कि उन्हां दी मां नूं बांझ कर दिता जांदा। इस मां दी जोग हरी क्यों हो गई, इस मां की कोख में भाग क्यों लगे ने? इस एक पंक्ति ने अब तो काफी मुद्दत पहले सोचने पर मजबूर किया से कि गुरु रामदास जी महाराज कोमल हिरदे के मालक, कोमल बचना के मालक, और ऐसे तिफली बचपने आप यतीम हो गए सन, मां बाप का सहारा हट गया सी। मां बाप के ना होने करके जो बच्चे ने दुख होंदा है इस दुनिया तो आप लंघे, सब कुछ आपने देखा सी। और जब गुरु नानक का ओ नूर जिसनों गुरु नानक आख्या गया, जब ओ नूर आपके हिरदे टिके है तो आपकी रचना तो वचन निकले ने, जिन हर हिरदे नाम न बसे तिन मात की जे हर वांझा। जिन्हों के हिरदे परमात्मा का नाम नहीं बसया ओ मां बांझ क्यों नहीं, बंजर क्यों नहीं, तो हरी भरी क्यों है? उन्होंने तो बांझ कर देना चाहिए सी। दरअसल ऐसा जापदा है कि मां के हथ दे कुछ है, सिर्फ गुरु रामदास जी ने ही नहीं लिखा, जगत के तमाम रहगरी पुरुषों ने इस संबंध में अपनी जबान खोली है। तो इन्हों के कुछ बोल मैं थोड़े सामने रखांगा। कबीर कहते ने भी जिस पुत्र ने ज्ञान की विचार नहीं की, जह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस न भई महतारी। हुण गुरु रामदास जी ने तो कह दिता भी ये बांझ क्यों नहीं हुई, कबीर कहने विधवा क्यों नहीं हो गई, सुहागण कह कबीर दे दो। कबीर बड़ा कोमल तबीयत का मनुख, दया की मूर्ति, लेकिन इस संबंध में वचन कठोर है। जै कुल पूत न ज्ञान विचारी, जिस घर में पुत्र ने रब्बी ज्ञान की विचार नहीं की, रब बारे नहीं सोचे, ईश्वर बारे नहीं सोचे, तो हम जिसने नहीं सोचा उन्हों कुछ कहना चाहिए सी, कबीर नहीं कहते उसने। जह कुल पूत न ज्ञान विचारी, विधवा कस न भई महतारी। ओ मां विधवा क्यों नहीं हो गई, ये सुहागन क्यों है? अगले श्लोक देते होर बड़ी कड़ी तारणा कर देती है। वैष्णो की कूकर भली, सासत की बुरी मां, ओ नित सुने हर नाम जस, ओ पाप बिसाहन जाए। सासत संसारी मनुख, संसार विच फसे होया, शक्ति का उपासक सासत। कबीर कहने जिहड़ा भगत है ना, उहदी जिहड़ी कुत्ती है, उन्हें जो पाल रखी है, वो कुत्ती भी सासत दे मां नालों चंगी है। अपनी तरफों कुछ शब्द कहने की हिम्मत भी नहीं, अर्थ कर लग्या में जबान लड़कना की जरूर है, पर बचन सामने ने ते मैं अर्श से करनी है। साकत की बुरी मां है, वैष्णो की कूकर भली, जो भगत है वो भी कुत्ती चंगी है, साकत की मां वालों, मनमुख की मां वालों। मानो ही इतनी ताड़ना क्यों? सिर्फ एक महापुरुष ने नहीं, बहुतिया ने की, थोड़े सामने रखनी। दरअसल मनुख ने बहुत कुछ मेहनत की है, हर वस्तु नाल उन्हों सवारन दी, शिंगारन दी बड़ी कोशिश की है। जमीन नाल मेहनत करके मनुख ने जमीना नू लह लहांदे चमन विच बदलिया, खेतियां विच बदलिया। लकड़ नाल मेहनत करके मनुख ने उसनों कारामद फर्नीचर दे बदल दिता है, बड़ा सोहना रूप दे दिता। ते लोहे नाल बड़ी मेहनत करके मनुख ने उसनों कम देन वाली मशीनरी का रूप दे दिता है, और सानू लोहे तो बड़ा सुख मिलते। सोने नाल मनुख ने मेहनत की थी, उन्हों खूबसूरत गहनिया का रूप दे दिता है। मनुख ने पशु पंखियां ते बनस्पति नाल भी बड़ी मेहनत की थी, पहले नालों दरख्त चंगे फुल ते फल देने लग पे। मनुख ने गऊं मझां घोड़ियां ते मुर्गी मुर्गियां नाल भी बड़ी मेहनत की, उन्हां दी नस्ल का भी सुधार किया। पर मनुख ने मनुख नाल कोई मेहनत नहीं की थी। बगौर कभी मुताला करना ते मेहनत तो बिना कुछ भी नहीं बनता। मेहनत नाल ही जमीन संवरी, मेहनत नाल ही लोहा कारामद होया, मेहनत नाल ही लकड़ किसी कम जोगा बनी। मेहनत करके वो थोड़ा बहुत दुध देने वाली गवां बहुत वड्डा दुध दे रही, बहुत सारा दुध दे रही। मनुख ने पशुओं नाल पंछियों नाल बनस्पति नाल बड़ी मेहनत की थी है। गजब की गल, जड़ चीजा लोहा लकड़ कुछ चेतन चीजा पशु पंखी बनस्पति ए बंदे ने मेहनत की थी है, बंदे ने बंदे नाल मेहनत नहीं की थी। रूहे जमीन देते सब कुछ सवरिया है, नहीं सवरिया तो बंदा बिल्कुल नहीं सवरिया। सब कुछ चंगा लगता, लोहा भी चंगा लगता, पित्तल भी चंगा लगता, पशु भी चंगे लगते, पंछी भी चंगे लगते, बनस्पति भी चंगी लगती है, नहीं चंगा लगता मनुख नहीं चंगा लगता। कभी बगौर मुताला करके देख लेना, क्योंकि मनुख ने मनुख नाल मेहनत ही नहीं की थी। तो मेहनत की शुरुआत होनी थी मां को। मनुखी बच्चे का सब तो पहले संबंध जुड़ता है मां नाल। मां तो वह संस्कार लेंदा है, मां तो वह बोली लेंदा है। भारतीय चिंतन भारतीय ऋषि मुनिया का ऐसा ख्याल है कि बच्चा जब माता के गर्भ में है तो मां दिया विचारों का उसके उत्ते असर है, मां के सुभाव का उसके उत्ते असर है। प्राचीन समय तो हिंदुस्तान के ऋषि मुनि मां को यह उपदेश से संदेश देते आए हैं कि गर्भकाल के समय तो भगवत का चिंतन कर, परमात्मा का चिंतन कर, धर्म ग्रंथों का पाठ पठन कर, ताकि तेरी कुख तो कोई भगत पैदा हो, कोई संत पैदा हो। कवि तुलसी का एक दोहरा साढ़े देश में बड़ा प्रसिद्ध होया, जननी जने ता भगत जन, ये तुलसी का दोहरा कईयों नूं भुलेखा है। तुलसी लिखते हैं, जननी जने ता भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। भई ऐ मां भगत पैदा कर, ते भगत हुण ओही पैदा करेगे जिहदे अंदर आप कोई भगती रस हो रहे। चलो नहीं तो भगत पैदा कर सकती, दिन रात प्रभु का चिंतन करके वह जो बीज है उसनों सरसब्ज कर सकें, उहदे च भगती रस पैदा हो सके, ऐसा तू नहीं कर सकती। तो तुलसी कहन कम से कम फिर तू दाता पैदा कर, परोपकारी पैदा कर, दूजियां दे दुख नूं दुख समझे, दूजियां दी विपता नूं विपता समझे, दूजियां दे हंजुआं नूं अपने हंजू समझे, ऐसा पैदा कर। ते जे तू ऐसा भी नहीं पैदा कर सकती तो कम से कम सूरमा पैदा कर, अणखीला पैदा कर, बेगैरत ते ना पैदा कर, अणखीला पैदा कर। ते जे तू अणखीला भी नहीं पैदा कर सकती तो तुलसी कहन फिर तू बांझ ही रह, तू बंजर ही रह, तेरी कुख च कुछ भी ना पैदा होवे। और हैरान हो गए कि सारे रैतरी पुरुष मां नूं ही कहन प्यो की इतनी गल नहीं की थी। मां की प्रथम गल, पशु पंखियों के भी संबंध जिहड़ा गूढ़ा है मां का ही है। पशु पंखियों प्यो कोई नहीं, भाव प्यो का जिहड़ा रिश्ता है वह पशुओं की दृष्टि पशुओं के जगत बहुत नहीं, उन्होंने बुद्धि नहीं आया, मां ही है। मां ही बच्चों की पालना करती है, चाहे चौपाए जानवर ने चाहे पंछी ने, बहुत कुछ मां के उत्ते आधारित है। बहुता गूढ़ा संबंध मां नाल है। पर आप सुन के हैरान हो गए, मैं ईरान में देखा वल्दीयत के खाने में बच्चा स्कूलों में वल्दीयत का जो नाम लिखा है मां का, प्यो का नहीं लिखा। मैं तो देख के दंग रह गया, मैं पूछना पड़ा इतने भी वल्दीयत के खाने भारत देश से प्यो का ही नाम लिखा है। इतने हर बंदा हर बच्चा वल्दीयत के खाने मां का नाम लिखा है। तरह तरह दियां गल्लां उत्थे सुनन नूं मिलियां कि ममता दी मारी हुई मां बच्चे नहीं छड़दी, लेकिन प्यो छड़ जांदा। इस तरह जिवें पशु पंखियां च प्यो छड़ जांदा, कोई बहुती ममता नहीं, कोई बहुती पकड़ नहीं। इस तरीके नाल पुरश दे अंदर कोई बहुती पकड़ नहीं। मजबूर होकर उत्थों की गौरमेंट ने बलदीयत दे खाने विच संबंध मां दा जोड़े, मां सहजे सहजे ये ममता जरूर घटी है, कितनी गलत मननी पेगी। पर मैं अर्ज करा जो कुछ नुकता निगाह में थोड़े सामने रखना चाहना, भाई मनुख की कोशिश है पशु चंगे पैदा होवन, पंछी चंगे पैदा होवन, दरख्त चंगे पैदा होवन, सब कुछ चंगा पैदा होवे, बंदे तू ये भी कोशिश कर बंदे चंगे पैदा होवन, मनुख चंगे पैदा होवन। मनुख चंगे पैदा होवन ये गल रब ते टालदा है, पशु चंगे पैदा होवन आप मेहनत करता है, पंछी चंगे पैदा होवन आप मेहनत करता है, साग सब्जियां फल फुल चंगे पैदा होवन आप मेहनत करता है, बंदे चंगे पैदा होवन रब ते छड़ दिंदा है। हद हो गई, तू जमीन में सवार के सोने फुल पैदा किए, कितनी मेहनत की थी। जे तू जमीन विच एक बगीचा बना सकता है, सोने फुलों पैदा कर सकता है, क्या घर में बगीचा नहीं बना सकता, घर के सोने फुल नहीं पैदा कर सकता। बगीचे तो फुल पैदा किए, घर मेरे कंडे ही पैदा किए, जो चुभ देना तैने भी तो बाकियों भी, जिन्हों तो तू भी औखा है तो बाकी भी औखे। तो श्री तुलसी स्पष्ट कहने भगत पैदा कर, भगत हूं वह पैदा कर सकेगी जो दिन रात कुछ भगती दियां किताबां पढ़दी है, सूरमा वह पैदा कर सकेगी जो सूरमियां दियां कहानियां सुनदी है, दाता उही पैदा कर सकेगी जो दाते के संबंध विच पढ़दी ते सुनदी है। अभिमन्यु बारे ऐसा ख्याल है कि उन्हूं सूरमताई का ज्ञान, चक्रव्यूह नूं तोड़न का ज्ञान माता दे गर्भ विच मिलिया सी। महाभारत विच ऐसा लिखिया है। अज तो 7-8 साल पहले जब मैं पढ़ता सी तां अपनी तुच्छ बुद्धि करके मूर्खता करके मैनू ये सारे गतोड़ प्रतीत आते सन, मैं लिख दिता ऋषि मुनिया ने। फिर यह भी लिखा सी कि सुखदेव नूं माता के गर्भ विच ब्रह्म ज्ञान हो गया, गर्भ विच अजे जन्म नहीं होया, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया जन्म तो पहले, उहदी मां की साधना, उहदी मां की मेहनत, उहदी मां की तपस्या। पढ़दा सी मैं, पढ़ के एक पासे रख लैंदा सी, पर गल अज स्पष्ट है, मनुख नूं संस्कार कित्थों मिलदे ने? मां बाप तो, संगत तो, तालीम तो। तालीम भैड़ी है, संगत भैड़ी है, मां बाप भैड़ी है, मनुख किस तरह चंगा बनेगा? बहुत औखी गल है। तो कोई भगती दे गीत मां अलापे ते बच्चे दे संस्कार भगती दे बनणगे, वरना गल बड़ी औखी है। तो तुलसी कहने जननी जने ता भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो क्यों अपनी शरीर की सत्या में बर्बाद कर दी जन्म दे, तो जमया जेड़ा ना सूरमा है ना दाता है ते ना ही वो भगत है, एवं जमीन का बोझ पैदा किया, धरती का बोझ पैदा किया। भगत हिरदा राम काठियावाड़ विच संत होए ने, गुजरात के इलाके बड़े उग गए, और हैरान हो गए सारे महापुरुष मां नूं निशाना बना के उपदेश करते हैं। प्यो की कोई गल नहीं, मैं इतनी अर्ज कर दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं प्यो की कोई जिम्मेवारी नहीं। मां की गल इस वास्ते कर रहे हैं कि पहले संस्कार बच्चे नूं मां तो मिलते, बहुत गहरा संबंध है मां नाल उसका, जितनी गूढ़ता है बच्चे की मां नाल प्यो नाल नहीं है उतनी। इस संबंध जो धर्म कहता रहा है वो तो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। खैर मुख्तसर करिए, हिरदा राम कहने प्रेम सुनीर बहे जस गावत नाचत देह चले सब अंगा। कै खब गए रण में भली बिरसों, लहू सो घाव चले अरधंगा, विद दोए पूत जने जननी जग और सबे सुत कीट पतंगा। ऐ जननी, इस तरह दे दो पुत्र पैदा कर, किस तरह दे? प्रेम सुनीर बहे जस जालक, नाचत दे चले सब अंगा। ऐसा रसक पैदा कर कि मूं दे चो रब दा नाम निकले ते अश्क बार होके रोन लग पे। कहिंदे ने स्वामी राम कृष्ण परमहंस बंगाल दे महात्मा, उन्हां दे सामने कोई राम राम नहीं कहिंदा सी डर दे मारे। पता क्यों? इधर उन्होंने राम आख्या, इधर उन्होंने समाधि लग जाती है, पर तीन तीन चार चार दिन उठते नहीं। हुण किसे थां ते लै जाना है तो रस्ते च पहले इंतजाम करना पैंदा सी कोई राम राम ना बुला दे, क्योंकि राम सुनिया नहीं तो इन्होंने इस बार हो जाए, आपे तो बार हो जाए। इतने भी जुड़े हुए पुरुष अकाली कौर सिंह बारे मैं सुने कश्मीर के उगे ये महात्मा गुरसिख, जिन्होंने इंडेक्स लिखे है गुरु ग्रंथ साहब जी का तुकबंदी तत्करा, शायद थोड़े पढ़ने चाहिए हो, एक तुक सिर्फ थानू याद हो, थानू महला भी याद ना हो, राग भी याद ना हो, उन्होंने एक एक तुक का तत्करा लिखा। एक तुक सिर्फ थानू याद हो, तत्करा लग के तुसी अंदाजा ला सकते हो भी ये तुक किहड़े पातशाह दी है, किहड़े अंग ते है, किहड़े राग दे। 20 साल मेहनत करके उन्होंने तत्करा लिखा, हुण पंजाबी भाषा विभाग ने दोबारा छाप दिता। दिन रात प्रभु चिंतन विच रहिंदे सन, हुण कोई रस्ते च उंजी वाहिगुरु कह दे, उन्होंने मस्त होके खड़े हो जाना, घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा लोकी सुधाई ते पागल कहण लग पए सन। बाद विच उन्होंने समझ आई भी इह ते इक्को ही दफा आखो ते जुड़ जांदा, इक दफा खप्पण दी बहुती लोड़ ही नहीं, इक्को दफा। इन्ना रस, इन्ना वैरागी, इतनी गहराई वेच वाहगुरु समा गया। इस वास्ते भगत कबीर ने साफ कह दिता है कि बहुती दफा की एको ही दफा बंदा जुड़ के कह दे सारा नगर पवित्र हो जाता है। कबीर सो मुख धन है, जय मुख निकसे राम, देही किसकी बापरी, पवित्र हो दो ग्राम। सारा शहर पवित्र हो जाता, देही की तो गल छो, घर की तो गल छो, टिक के मनुख एक दफा कह देवे सही। पर हम टिक के उस तरह के पुरुष कह सकते हैं जिन्हों की कुछ गल है संसार के धार्मिक इतिहास के, वरना तो बंदा वाहगुरु वाहगुरु आखी जाता आप ही नहीं पवित्र होया, कि खाक नगर में पवित्र करेगा, आला दौला ही पवित्र करेगा। तो भगत हिरदा राम जी कहते हैं प्रेम सुनीर बहे जस गावत, नाचत दे चले सब अंगा। ऐसा भगत पैदा कर मां कि जब उसकी रसना तो परमात्मा का नाम निकले, इन्ना बैरागी हो जाए, जुड़ जाए और रोवे। इतनी मैं अर्ज कर दिया कि परमात्मा के मार्ग से चलना, हासा रोना रस्ते च आंदा, हासा आ जाता है अपनी मूर्खता पर, रोना आ जाता है बीती हुई जिंदगी से, एवें लंघ गई पिछली उम्र अजाई गुजरी, हर की भगत न की थी, आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो भी थी सो भी थी। और जो रोणिया की दुनिया चो नहीं लंघिया, पश्चाताप नहीं पैदा होया, अज उसने गल नूं समझिया भी नहीं, कतई ही नहीं समझे, इतने 40-40 साल तो आके भी कई नहीं समझे। और मैं थोड़े कैनेडा विच घूम फिर के जो देखिया, लोग यही कहते हैं बस मन चंगा होना चाहिए जी, रैत बैत की करनी है, मन चंगा होना चाहिए, गुरुद्वारे जाके की करना है, मन चंगा होना चाहिए, पाठ करके की करना है। तो मन चंगा किहड़े जादू नाल करेंगा, किस तरह कर लेंगे? भी नियम विधान धर्म के मनण की की लोड़ है, मन चंगा होना चाहिए। यह जो पुरुषों को एक निकी जी बेनती करते हैं कि सड़क के उत्ते जब तुम चलते हो, कार चलाते हो, तो कभी यह आख लो सिर्फ मन चंगा होना चाहिए, ट्रैफिक के रूल की पालना करके की करना, ट्रैफिक के नियम की पालना करके की करना उत्थे कहंदे हो उत्थे ते नियम की पालना कर दो सड़क दे उत्ते नियम की पालना करो ते गुरुद्वारे नियम की पालना ना करो वे नियम की करना है मूर्खता की इंतहा है थोड़ी नहीं इंतहा सड़क उत्ते तुसी चलो तो जो नियम बन गए हैं सब नियम की पालना कर दो और जिहड़ा नियम की पालना नहीं करेगा एक्सीडेंट होगा घर नहीं पहुंच सकेगा यकीन जानो जो गुरु के बनाए हुए नियम की पालना नहीं करता वह भी अपने निज घर विच नहीं पहुंच सकेगा आत्मा विच नहीं पहुंच सकेगा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेगा टकराव हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा जिहड़ा नियम की पालना नहीं करता एक्सीडेंट हो ही जाता गड्डी चिकना चूर हो जाती है खुद भी सट्टा लग जाए तो मैं देखता जिन्होंने नियम की पालना नहीं की सट्टा लगियां और इतनिया सट्टा लगियां ने कई कुछ गवा बैठे ने बहुत कुछ गवा बैठे रंग गवा बैठे रूप गवा बैठे बख्शिशां गवा बैठे सतगुरु की देन गवा बैठे एक्सीडेंट भी हो गए और मैं हैरान हूं जिहड़े कहिंदे की करना नियम की पालना करके इस तरह की जरूरत सिर्फ सिख ने जरूर की है की करना नियम की पालना करके वरना मस्जिद के जाते हो कभी मुसलमान ने नहीं आख्या कि लड़ा शरह की पालना करने की वह करता है अरब के बड़े बड़े शेर जो अरबा पति ने धन के जिन्होंने घर में अंबार ने पर मस्जिद के जाते हो तो नियम की पालना जरूर करते हैं चार कौड़ियां सिख को आ गई इतना आफर गया कहिंदा गुरुद्वारे नियम की पालना करनी हद हो गई कि नियम की पालना नहीं करनी तो गुरु के घर तक नहीं पहुंच सकेगा कतई ही नहीं पहुंच सकेगा गुरुद्वारे आ गए की आए हैं कुछ भी नहीं आया ना समझी मैं गुरु तक पहुंचे हैं इस चक्कर च ना करनी नियम की तो पालना करनी पड़ेगी और भोजन बनाने का भी नियम ही है नियम के मुताबिक मर्यादा के मुताबिक तू नमक मिर्च मसाले पाएगा कितनी देर तक अग पे रखना है इस साग सब्जी इस दाल में किन्ना क पानी पाना सब कुछ एक मर्यादा एक नहीं होना है भोजन बनाने की एक मर्यादा है भजन करने की भी एक मर्यादा है भोजन का रस माणन की एक मर्यादा है भजन का रस माणन की भी एक मर्यादा है ये तो तू कभी नहीं आखता कि करना मर्यादा की पालना करके भोजन ही तो छकना है नहीं छक सकेगा जब एक किलो पूरा ही लून पै गया है किसी एक कौड़ी दाल दे नहीं छक सकेगा तो फिर औखी हो जाएगी गल उते ते सब कुछ सोच सोच के तू बनाना सड़क पर चलना बड़े सावधानी के नाल कि बनाओ हुए ट्रैफिक के रूल की किधरे मेरे को उलंघना ना हो जाए कि गुरु ने जोड़े रूल बनाए उसकी कदम कदम देते तू धजियां उड़ाई जाना कदम कदम देते तो फिर कहना गुरु की बख्शिश हो गए फिर कहना गुरु नाल संबंध जुड़े औखी गल है और जोड़ा कहें चलो अज मैं नहीं पालना करनी कल कर लवाना यह मनुख दसदा पै कि जो गुरु नाल कोई संबंध नहीं कशिश से खिच नहीं घर में अग लगी है तो बंदा कहें कोई गल नहीं कल बुझा लवेंगे अज की करनी है कहता है मनुख बुखार चढ़िया हो बंदे ने तो बंदा कहता कोई नहीं कल दवाई ले लवेंगे कल डॉक्टर को गोलियां ले लवेंगे कल उसको दिखा देंगे दो चार दिन रहन दो बुखार की करना है हटा के बुखार तो तू अज ही हटाना चाहना है कल तो नहीं छड़ना चाहता घर की अग तो तू अज ही बुझाना चाहना है तो मन में जोड़े तेरे तृष्णा के भांबड़ लगे ने वैर विरोध से कल से छड़ता पैं इस तो स्पष्ट है कि मन के विकारा नाल तू सहमत है तो गुरु का बनाया हुआ नियम तेन कबूल नहीं प्रवान नहीं तो जिसनों कबूल नहीं प्रवान नहीं इतनी गल सरवण कर लेने उसका गुरुद्वारे आया गुरु नू प्रवान नहीं है ये गल वक्री तुसी अपने मन च भावें कुछ भी सोच लो मन चंगा होना चाहिए मन जादूगरी नाल चंगा कर लेगा किस तरह चंगा करेगा गुरु के नियम की पालना करेगा ता ही चंगा होगा और किस तरह होगा होर तो कोई तरीका है नहीं कि जो होर भी कोई तरीका है तो फिर तेन गुरुद्वारे आने की लोड़ ही नहीं अपना कर ले जिस तरह है मनुख असमर्थ है
अपना मन शुद्ध करने दे गुरु के आसरे की लोड़ है, पर गुरु ने एक नियम बना दिता है। यह नियम है मेरे को आन का, यह नियम है भजन करन दा, यह नियम है मेरे नाल जुड़न दा, यह नियम है अकाल पुरख दे नाल जुड़न दा। ते तू आखे की करना मर्यादा की पालना करके, मन चंगा होना चाहिए। क्षमा करनी है, कोई बहुत सियानी गल ने इस चक्कर च ना पैना, हद हो गई। एक आम बंदे ने गवर्नमेंट ने सड़क के नियम बना दिते ने तो उहदी पालना पिया करदा है। ते महान पक्की सरकार जो जुगो जुग अटल रहिंदी है, गुरु ने नियम बना दिते ने तो चुप के करे पिया मार। और जिहड़ा ऐसा कहिंदा पिया लगदा इंज शायद इस मार्ग ते चलदा भी नहीं पिया, पुछदा ही पिया जी, क्योंकि मार्ग ते चले तो नियम की पालना करनी पैगी। तो जे नियम की पालना नहीं करेगा तो चलेगा, एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो खिमा करनी, कई गुरुद्वारे आंदे आया भी जख्मी हो गए हैं, गवाह बैठे ने रंग रूप सब कुछ, इतने एक्सीडेंट हो गया और की है। जोर का एक्सीडेंट हो तो कोई ना कोई अंग बंदा गवाह बैठा है, तो सिखी के अंग बंदे गवाह बैठे ने। सिखी का अंग सी दस्तार, सिखी के अंग सन केस, गवाह बैठे ने। जोर का एक्सीडेंट हो गया। गजब की गल ए कि मुदई भी वह पै बनते हैं जिन्हों को ना सिखी सरूप, ना सिखी की गल, ना सिखी का सिद्धांत, ना सिखी की असूल, मुदई हो। अजीब गल देखी, गुस्ताखी माफ थो ना गल चंकी लगे तो आप चलते बड़े झगड़े बड़े वाली कोई गल नहीं। आ चोर ही बैठ जाए थाने बेच, गल बड़ी औखी। बाहर की अगन बूझत जल सरता के, नाव में जो आग लागे कैसे कह बुझाइए। भाई साहब, भाई गुरदास जी, कई घर नू अग लगे ते पानी नाल बुझावांगे ते पानी नू अग लग जाए फिर किस तरह बुझाओगे। चोरन के त्रास ओट लीजियत कोट, गढ़ गढ़ में जो लूट लीजिए कहां कद जाइए। डाकुआ ते चोरां तो भजदे चले जाइए थाने, ते थाने च पुलिस ही लुट लवे, थानेदार ही लुट लवे, वो ही चोर हो गए, वो ही डकैत हो गए, फिर कितने जाइए। तुसी आखोगे भाई साहब कहना की चाहते ने, भाई साहब ने गल खोल दी है। तैसे माया डर डर पत, हार जो गुरुद्वारे आवे तहां जो व्यापे माया तहां ठहरा। दुनिया के कलेश तो, भांबड़ा तो, तृष्णा तो, विकारा तो डरदे गुरुद्वारे आ जाइए। इत्थे भी सब कुछ ओही होवे जिहड़ा बाहर है, तां भाई साहब कहिंदे फिर कित्थे जाएगा। जिहड़ा अनर्थ तू बाहर करें ओही अनर्थ तू इत्थे कर छड्डे। इत्थे पाणी नूं अग लग गई, ते हुण पाणी नूं अग लग गई किस तरह करिए, कोई इलाज ही नहीं। उहदा की इलाज है? जिहड़ा कदी गुरुद्वारे नहीं आया उहदा ते इलाज है, ते जिहड़ा गुरुद्वारे आ के भी गुरु तक नहीं पहुंचिया उहदा की इलाज है? इत पानी नूं अग लग गई। जिहड़ा कदी गुरुद्वारे नहीं आया, चलो उहनूं गुरु की गल सुना के मनाया जा सकता है, पर जिहड़ा गुरुद्वारे आके भी नहीं मनदा उहदा की इलाज है? उहदा की इलाज है? मैं देखदा पिया इस तरह के ला इलाज मनुख इत्थे बहुत ने, उहदा कोई इलाज नहीं। पर जिहड़ा नहीं आया कदी, चलो उहदा ते इलाज उहनूं जिस दिन भी सुनेगा गल मन लवेगा। पर जिहड़ा रोज आके भी नहीं मनदा, फिर उहदा की इलाज है? ते मैं एक गल बार बार कहना हुंदा, लफ्ज़ दोहरा दिया, केड़ी गल सुनी गई है, केड़ी गल सुनी गई है जो मनी गई है, जो नहीं सुनी गई, जो नहीं मनी गई वो सुनी भी नहीं गई। भरा गिला करदा है, ए भरा तू मेरी गल सुनी नहीं, सुनी तो है उन्हें मनी नहीं, इस वास्ते कहिंदा तू मेरी गल सुनी नहीं। पति गिला कर छड़दा पत्नी ते, तू मेरी गल सुनी नहीं, नहीं सुनी तो है उसने मनी नहीं, इस वास्ते कहता तू सुनी नहीं। मित्र मित्र पे गिला कर देता, भाई मैं इतनी उच्ची गल आखी तू मेरी गल सुनी नहीं, नहीं सुनी तो है उसने मनी नहीं। तो जिहड़ी मनी नहीं गई वह सुनी भी नहीं गई। 40 साल तक सुनते रहो, जे मनी नहीं गई तो कोई भी नहीं सुनी गई। इतनी मैं अर्ज करता हूं, केड़ी गल सुनी गई है जिहड़ी मनी गई है? ते जिहड़ी गल सुन के मनी गई, वह तो सुनदे ही बंदा ब्रह्मज्ञानी हो जाता। सुनिए सिद्ध पीर सो नाथ,
सुनिए धरत धौल आकाश सुनिए दीप लोह पाताल सुनिए कहो न सके काल नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश।
तो मैं अर्ज करा गुरु घर विच आण दे गुरु तक पहुंचण दे बकायदा नियम ने। नियम की उलंघना करके हो सकता है मनुख शैतान दे घर ते पहुंच जाए, गुरु दे घर नहीं पहुंच सकेगा। गुरु दे ते नियम ने अपने बनाए, गुरु की बनाई हुई अपनी मर्यादा अपने असूल ने, और उन असूलों बारे बड़ी सख्ती नाल उन्होंने कह दिता है कि भी नियम की पालना ना की तो गल खत्म। थोड़े जिया भी एक मिनट वास्ते भी तुसी ट्रैफिक नियम की उलंघना करके चलो एक्सीडेंट हो जाएगा, घर नहीं पहुंच सकोगे। कि जिहड़ा रोज ही गुरु के बनाए हुए नियम की उलंघना करे, तुसी दसो गुरु के घर पहुंच सकेगा? अकाल पुरख के घर पहुंच सकेगा? तो कदम कदम के उलंघना करी जाना है। ऐसा क्यों है? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का फैसला है कि मर्यादा पालन करन दे संस्कार मनुख नूं तीन थावां ते मिल दे, मां बाप तो, संगत तो, तालीम तो। हुण ना तालीम कम दी होवे, ना संगत किसे कम दी होवे, ना मां बाप कम दे होवन, ते गल ते खत्म हो गई। ना जमीन चंगी, ना माली किसे कम दा, ते ना ही बीज चंगा, गल बिल्कुल खत्म हो गई। फिर की जमेगा, फिर की पैदा होगा? और कोशिश होंदी है किसान दी, बीज चंगा होवे, धरती चंगी होवे और उदी देख रेख चंगी होवे, बनस्पति चंगी पैदा होंदी है, खेती चंगी पैदा होंदी है, हद हो गई, अन्न की खेती चंगी पैदा हो रही है, फल फुलां की खेती चंगी पैदा हो रही है, बंदियां की खेती किसी काम की नहीं पैदा हो रही। समुची दुनिया दे चे बंदे दैत ही पैदा हो रहे हैं, बंदे बंदे नहीं पैदा हो रहे, मनुख मनुख नहीं पैदा हो रहा, मनुख जो कुछ पैदा हो रहा थोड़े सामने समुची दुनिया च। तो स्पष्ट रूप दे चे भगत जना ने कह दिता है, ऐ मां जे तू पैदा ही करना है तो एक भगत ऐसा पैदा कर रब का ना सुने तो बैरागी हो जाए, ना सुन दे। मैं अपनी जिंदगी इस तरह के दो पुरुष जरूर देखे रहे, इस वास्ते मैं कहना इस तरह की हालत होंगी। मैं जिन्हों को व्याकरण गुरबाणी को पढ़ता सी रहा तो मैं भावें थोड़े दिन ही उन्होंने शाम के वक्त मैं कह लगे सुखमनी साहब का पाठ सुनाओ मैंने। मैं ठीक है सुना दिया, बस मैं जो शुरू ही किया सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल कलेश तन माए मिटाओ, बस इतने ही जुड़ गए रोंद ही रहे। बजुर्ग ये व्याकरण के पंडित सन, निर्मलिया के उदासिया गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ पढ़ाते रहे। अगर नहीं पंक्तियां सुनिया भावें मैं पढ़ते ही रहा, दो चार अष्टपदियां पढ़ गया नहीं सुन रोंद ही रहे। और ऐसे जुड़े फिर इस तरीके के नाल मैं एक होर पुरुष देखा जो सिर्फ वाहगुरु सुनद ही जुड़ जाता, तुसी वाहगुरु आखो बस जुड़ जाता, इन्ना बैरा गया फिर वह इन्ना ही कोमल हो गया, इन्नी गल बन गई। इस वास्ते पंडित हिरदा राम जागदा इन्हों का भी अनुभव बड़ा गूढ़ा है, वो तो कहें ऐ मां ऐसा पैदा कर रब का ना सुने तो बैरागी हो जाए, ना सुनद ही पशक बार हो जाए, ऐसा वो तो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जी, प्रेम सो नीर बहे जस दावत नाचत दे चले सब अंगा, कह खग गए रण में भली बिरसो लहू स्वभाव चले हर धंगा। पंडित हिरदा राम कहते ने फिर जे तू ऐसा भगत नहीं पैदा कर सकती तो फिर ऐसा सूरमा पैदा कर, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जान, बेगैरत ना बने, अपनी अणख के डटा ही रहे, अपनी गैरत देते। गैरत मनुख की असली दौलत है, क्योंकि गैरत के आसरे से बोली रहती है, गैरत के आसरे से पहरावा रहता है, गैरत के आसरे से धर्म रहता है, गैरत के आसरे से संस्कृति रहती है, गैरत के आसरे से स्वभाव कल्चर रहता है, सब कुछ। तो गैरत ही मिट गई, गया सब कुछ, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। असली दौलत मनुख की यही है, गुलाम बंदे को अपना कुछ भी नहीं होता, ना अपना पहरावा, ना अपनी बोली, ना अपनी सभ्यता, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੁਤੰਤਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ, ਦੋ ਅਰਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੋ ਈਰਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਦੋ ਚੀਨੀ ਚੀਨੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਦੋ ਅਰਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਔਰ ਦੋ ਈਰਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਣਗੇ, ਦੋ ਬੰਗਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਗਲਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲੀ, ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਨਾ ਸੁਭਾਅ, ਨਾ ਧਰਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਤੜਪ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੁਲਾਮ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਤਾਰੀਖ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀਏ, ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀਏ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀਏ, ਤੇ ਜਮਿਆ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਜਮਿਆ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀਖ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਲਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੀਰ ਬਹਿ ਜਸ ਦਾਵਤ, ਨਾਚਤ ਦੇਹ ਚਲੇ ਸਭ ਅੰਗਾ, ਕਹਿ ਖਦ ਗਹਿ ਰਣ ਨੇ ਭਲੀ ਦਿਲਸੋਂ, ਲਹੂ ਸੁਖਾਓ ਚਲੇ ਅਰਭੰਗਾ, ਵਿਦ ਦੋ ਪੂਤ ਜਨੇ ਜਨਨੀ ਜਗ ਔਰ ਸਭੇ ਸੁਤ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਐਸਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਡਟਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਈ ਗਰਦਨ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਦ ਰੁੱਖ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਗਈ, ਖੁਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਔਰ ਬੇਹੋਰ ਬੇਅਣਖਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨੇ, ਵਿਦ ਦੋ ਪੂਤ ਜਨੇ ਜਨਨੀ ਜਦ ਔਰ ਸਭੇ ਸੁਧ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸੌ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੂਰਖ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸੌ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦੋ ਮੂਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੋੜਦਾ, ਉਹ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੋੜਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾ। ਭਾਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਪੇਦਿਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਦੋ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਔਰ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੌ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਗਰਭ ਜਿਉਂ ਜਾਣਦੀ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ, ਕੁਛ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਜਦ ਇਤਨੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਬਗੀਚਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਐਸੇ ਅਲਾਪ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਜੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਅਲਾਪੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਡਿਤ ਹਿਰਦਾ ਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਗਰਭ ਜਿਉਂ ਜਾਣਦੀ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਪਰ ਕਪੁੱਤੋਂ ਧੀ ਚੰਗੇੜੀ ਪਰ ਘਰ ਜਾਏ ਵਸਾਏ ਨਾ ਆਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੈੜਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੰਨ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਧਨ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਨਿਹਰਾ ਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਸਵਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੀ ਨਿਹਰਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਧਨ ਇਤਨਾ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ। ਧਨ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਗਵਾ ਛੱਡੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। और जितनी मेहनत करके तू धन कमा रहे हैं उतनी मेहनत करनी पेगी बच्चों को सवारन विच। इस वास्ते साढ़े देश अजे तक इन्नी वंड है, यह गल वक्री है कि उत्थे भी यूरोप की नकल चल पई है, पुरुष बाहर की दुनिया सवारे स्त्री घर की दुनिया सवारे ताकि बच्चे चंगे बनन, चंगा माहौल बने, धार्मिक माहौल बने, घर का वातावरण चंगा हो। ठीक है धन काफी इकट्ठा हो जाए बच्चे गवाह बैठेगा, पर जब तू देखेगा धन कोल है तो हम बच्चे नहीं रहे, फिर जो तू जारो जार रोवेगा उस दुख को फिर तू ही जानेगा और कोई नहीं जान सकता। और मैं इस तरह के बेशुमार रोंदे पिटते देखे ने जो बच्चों का धन औलाद का धन बिल्कुल गवा बैठे, तबाह कर बैठे, बर्बाद कर बैठे। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं पुत्र भैड़ा जम पवे ता कुपुत्तों धी चंगेरड़ी पर घर जाए वसाए न आई। भाई साहब की पौड़ी आपको सरवण करा रहे हैं। भाई जी कहते हैं फिर भैड़े पुत्र नालों धी चंगी है, कम से कम किसी का घर से वसाया, किसी के घर की रौनक से बनी, उस भैड़े पुत्र नालों धी चंगी है। पर भाई जी इतने नहीं रुकते, भाई साहब कहते हैं मां बाप का धी भी भैड़ी जम पवे क्योंकि बिना मेहनत कीते हैं ना पुत्र चंगा होना ना धी चंगी होनी, धी भी भैड़ी जम पवे। कुल नू कलंक लाण वाली, मां बाप की पग लाण वाली, घर नू कलेश देण वाली, दुख देण वाली, संताप देण वाली जे धी भी ऐसी पैदा हो जाए फिर तो भाई साहब ने जिहड़े अगे करड़े बोल कहे ने इहनू सुनन वास्ते जिगरा चाहिए। वो कबीर नालों भी ज्यादा करड़े कह गए, हिरदा राम के तुलसी नालों भी ज्यादा करड़े कह गए भाई साहब भाई गुरदास जी। कुधियो सप चंगेरड़ा माओ जने दी जन जन खाई, मां डायण धन धन है कपती पुत्ते खाए अगाई। ऐ मां तू धी भी भैड़ी पैदा कीती ते पुत भी भैड़ा कीता, भैड़ा पैदा कीता तेरे नालों सपनी चंगी, तेरे नालों डायण चंगी। थोड़ी गल नहीं, मां डायण धन धन है भाई, क्यों सपनी की यह फितरत है कि वह तीन महीने अपने अंडिया से बैठती है, तीन महीने तो बाद जो बच्चे निकलते खाई जाती है, सरपण होए के औतरे जाए अपने खाए, वो अपने जाया खा जाती है। हम कहने दस तो लैके कोई डेढ़ पौने 200 तक यदा अंडा और इन्ने बच्चे निकलते हैं, पर ज्यो ज्यो अंडिया चो बच्चे निकली जाते खाई जाती है, भुख की मारी तीन महीने बैठी रहती है, खाई जाती खाई जाती। भाई साहब कहते परोपकार किया, भावें बच्चे बैड़े पैदा किए पर खा गई, जमीन का बोल के कुछ हल्का किया। भाई साहब के कहने का ढंग वेखो, कोई एक अद सप सपनी की निगाह तो बच जाए कोई वड्डा होके जिंदा रहिंदा वरना खा जाती है। यह सपनी का सुभाव, सरपण होके औतरे जाए अपने खाए। तो भाई साहब कहते हैं सपनी चंगी, ठीक है भैड़े बच्चे पैदा किए खा गए, ते मां डायण धन धन है कपती पुत्ते खाए अगाए। वो डायण मां भी धनता दे योग है जो कपती पुत्र के टुकड़े करके खा गई, जमीन का बोझ हौला कर चले। ते ऐ मां तू जमीन का बोझ पैदा किया ते उसनू अपना खून अपनी ममता दे जानी है ताकि होर धरती का बोझ बने, और ये धरती का बोझ तू पैदा किया। अगर वह संसार वास्ते दुखदाई है, अगर वह जगत के किसी काम नहीं आया, जो आत्मक विकास नहीं पैदा किया उसने, तो जमीन का बोझ है। और मैं फिर अर्ज करा, मनुख ने बहुत कुछ मेहनत की है, लकड़ा नाल, सोने नाल, चांदी नाल, लोहे नाल, पशुआ नाल, पंखियां नाल, बनस्पति नाल, बंदे ने बंदे नाल मेहनत नहीं की थी। जे किधरे बंदा बंदे नाल मेहनत करे तो हर घर में ध्रुव पैदा हो सकते हैं, हर घर में प्रहलाद पैदा हो सकता। और बाबे फरीद की यह अटल पंक्ति है, तिन धन जने दी माओ आए सफल से, धनता दे योग है ओ मां, पूजन योग है ओ मां, जिसने किसी ऐसे बच्चे ने जन्म दिता जिसका संसार पर आया या सफल हो गया। तो इतनी गल स्पष्ट है कि पहले संस्कार मनुखी बच्चा मां बाप तो लेंदा है, प्यो शराब पिया पींदा है, तो हुण तुसीं आखो बच्चा ना पीवे, भई ये चीज माड़ी आउंदी है, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪੀਣ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਜੈਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਫ਼ਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਗੰਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਪੱਕੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਗਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਸਨ, ਸੋਚਦਾ ਚਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਗੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਬੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਬੈਠਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣ ਵੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ ਵੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਈਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਨ, ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲਈ, ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਡਾਕੂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਸਾਈਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਜੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਡਾਕੂ। ਉਹ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਸੀ ਅਫਗਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲਈ, ਗੇਰਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਤਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੂੰ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਵਜੀਦ ਖਾਂ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ? ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਹੋਤੇ ਪੂਤ ਅਫਗਾਨ ਕੇ, ਦੇਤੇ ਦਸਤੇ ਮੋੜ, ਅਬ ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਰਘੁਨਾਥ ਕੀ, ਸਕੇ ਨਾ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ। ਜਦ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰਘੁਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਖਤਮ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ, ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਨਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਸਹਿਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਵਜਨੀ ਦੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਬੈਰਾਗ ਇਹ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਦ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋ। ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਜਪੂਤ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਕਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਇਹ ਤੀਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਫਾਸਲਾਰ ਇਤਨਾ ਬੁਰਦਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਇਤਨਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ, ਤਾਲੀਮ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀਆਂ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਮਕਬਰਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ, ਤਾਲੀਮ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਨ ਹਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਣੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ, ਕੋਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਵੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਧਨ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।